समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, हमारे स्टूडियो की घड़ी में ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ खास है उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों और आर्थिक जगत पर भी रहेगी हमारी नजर और उन विशिष्ट व्यक्तित्वों को भी हम करेंगे याद जिनकी आज है पुण्यतिथि या फिर जन्मदिवस। परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं मुदिता और मेरे साथ है मेरी को होस्ट लालिमा अनेजा डैंग। लालिमा, आपको भी मेरा नमस्कार।
नमस्कार मुदिता, आपने अपनी मीठी सी आवाज में इस प्रोग्राम की शुरुआत कर दी है। आई कैरीड फॉरवर्ड, यस, आई एम हर को होस्ट लालिमा अनेजा डैंग एंड एज शी गेव एन आइडिया ऑफ व्हाट्स गोइंग ऑन, what's going to be in this program. It's a news magazine show where we have a selection of news. We'll have some discussion on some topic. What? Let's keep it a little secret right now. There'll be some reports, there'll be business capsules, there'll be some tributes and much more. And all this packed tightly in the next 30 minutes. So let's begin with the headlines right away. All right. Political parties intensify election campaign for assembly polls in Maharashtra and Jharkhand. Prime Minister and senior BJP leader Narendra Modi addresses public meeting at Dhule in Maharashtra.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, भ्रष्टाचार कतई बर्दाश्त न करने की सरकार की नीति से ये जड़ से समाप्त हो सकेगा।
एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉ एस जयशंकर एम्फसाइजेस कोलैबोरेशन बिटवीन इंडिया एंड आसियान कैन बी क्रूशियल इन एड्रेसिंग कंटेम्पररी चैलेंजेस।
सर्वोच्च न्यायालय ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक दर्जे से संबंधित मामले में वर्ष 1967 के फैसले को निरस्त किया, मामला नियमित खंडपीठ को सौंपा।
इन बैडमिंटन, यस, लेट्स टेक अ लुक एट द स्पोर्ट्स आल्सो। इन बैडमिंटन, इंडियाज किरण जॉर्ज एंटर्स मेंस सिंगल्स सेमीफाइनल्स एट कोरिया मास्टर्स टूर्नामेंट इन इक्सन सिटी। एंड इन क्रिकेट, यस मुदिता, कम ऑन।
हां, क्रिकेट में 4 मैचों की श्रृंखला के पहले 2020 मैच में आज डर्बन में भारत का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा।
Yes, today is which day? Yesterday we observed National Cancer Day and today we are talking about World Radiography Day because this is a global healthcare awareness event observed on the 8th of November every year. Why? Because we want to tell people about how important diagnostic imaging has become, how important radiation therapy has become, and how important it is also to take precautions. You may wonder what precautions one must take when one is exposed to x-rays. Well, it is very important that if you're exposed to x-rays of any part of the body, you wear some kind of a lead apron. The person who's taking the x-ray and the person whose x-ray is being taken, it's better if they are equipped or wearing a lead apron, because that the other parts of the body are then prevented from the x-rays. After all, too much exposure to x-ray also is not good. What do you think, Mudita?
बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने लालिमा। तो वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे हर साल 8 नवंबर को मनाया जाता है और हम श्रोताओं को बता दें कि ये दिन 1895 में जर्मन वैज्ञानिक और भौतिक विज्ञानी विल्हेम रॉयजन द्वारा एक्सरे की खोज को याद करने का दिन है। चिकित्सा क्षेत्र में रेडियोलॉजी और एक्सरे जैसी तकनीकों के योगदान को मान्यता देने का दिन है और इस दिन का उद्देश्य मनाने का उद्देश्य जो है वो रेडियोलॉजी के पेशेवरों की भूमिका को सम्मानित करना और लोगों में जागरूकता फैलाना है। ये रेडियोलॉजी के क्षेत्र में हो रहे नए विकास और शोध को बढ़ावा देने का भी अवसर है।
Yes, radiology is very important these days. It's a very non-invasive procedure because you're exposed to a machine which gives some radiation. Radiology has a very important role in healthcare these days because it helps physicians diagnose and treat various medical conditions. And actually, when you talk of radiology, it encompasses a wide range of imaging techniques, which means x-rays, of course. It also means CT scans, MRIs, and ultrasounds. And radiology is very important for detecting conditions like cancer, fractures, and infections early on. Even mammograms are used to check breast cancer at an early stage. And similarly, chest x-rays can identify pneumonia or lung disease before they become severe. And radiologic imaging also helps doctor create personalized treatment plan for patients to know the exact size and location of tumor and so on. As I said earlier, it is minimally invasive, and it's good because people, there's no invasion happening on your skin or your body.
Bilkul, bilkul, Lalima. Aur jaisa aap mera haath abhi dekh sakti hain, usme already excellent laga hua hai. Aur usi din mujhe waqai ehsaas hua hai ki x-ray hamare liye kitna madadgar sabit hota hai. Aur zara soch ke dekhiye ki galat x-ray kisi rogi ke ilaaj ko kis disha mein le ja sakta hai.
और ऐसा होता है
जी, बिल्कुल होता है. और इसीलिए रेडियोग्राफरों का बहुत महत्व है चिकित्सा विज्ञान में. और अक्सर जो है वो अनदेखा सा हो जाता है, क्योंकि सामने हमें डॉक्टर्स दिख रहे होते हैं या नर्सेज या बाकी जो मेडिकल स्टाफ होता है, पर हम उनको कई बार भूल जाते हैं. तो आइए जानते हैं कि विश्व रेडियोग्राफी दिवस के बारे में थोड़ा सा और, कि इसका इतिहास क्या है. 2007 में 8 नवंबर को इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ रेडियोग्राफर्स एंड रेडियोलॉजिकल टेक्नोलॉजिस्ट द्वारा विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया गया. और 2012 में इस दिन का पहला बड़ा आयोजन यूरोपियन सोसाइटी ऑफ रेडियोलॉजी ने किया.
And may I also add, Mudita, sometimes what happens is that it is not just important for the technician to be wise. As I said, he or she must wear a lead apron. But it is also important that the reports are read correctly. I remember there was a case where, you know, agar aapne kabhi kisi ne x-ray, chest x-ray karaya, to kehte, hold your breath.
Jai.
Otherwise, if you're breathing and your image comes, then there's a shadow which comes. Mm-hmm. So once a small child was diagnosed with an enlarged heart.
Jai.
And what they came to realize later, after showing to many doctors and senior physicians, was that actually the child obviously can't hold the breath. So the shadow of the image was gave a shadow, and that created an impact or an impression of an enlarged heart when it wasn't. So you have to have good people to read these reports and see these x-ray films as well.
Bilkul. अब हम चलते हैं दिल्ली की जलवायु. यहाँ का वायु गुणवत्ता सूचकांक लगातार बहुत खराब श्रेणी में बना हुआ है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली में आज सवेरे वायु गुणवत्ता सूचकांक 384 दर्ज किया गया. और बोर्ड के अनुसार शहर के कुछ हिस्सों में वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 के आंकड़े को भी पार करते हुए गंभीर स्तर पर पहुंच गया है. प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है दिल्ली और आसपास के इलाकों में, और इसी के साथ तमाम अस्पतालों में मरीजों की संख्या भी बढ़ती जा रही है. आकाशवाणी से खास बातचीत में एम्स के वरिष्ठ डॉक्टर करण मदान ने बताया कि दमा और सांस के मरीजों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है.
जो हमारे सांस के मरीज हैं, जैसे COPD, अस्थमा के मरीज हैं, अब 15-20% उनका नंबर बढ़ गया है पिछले कुछ दिनों में. और उनको सांस की तकलीफ भी हो रही है, जिनको अस्थमा है, कई लोगों को अस्थमा का अटैक हुआ है, कईयों को अपना ट्रीटमेंट बढ़ाने की जरूरत भी पड़ती है, कुछ को हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ता है. तो इस स्थिति में जब पॉल्यूशन का लेवल बहुत ज्यादा हो या एक वायु बहुत खराब है, तो उन दिनों में ये मरीज जिनको सांस की दिक्कत है, वो थोड़ा बाहर अपना जो समय है थोड़ा कम बिताएं, जो एक्सर्शन या व्यायाम जो है हो सके तो अंदर करें, बाहर थोड़ा अवॉइड करें, और अपना इनहेलर और अपनी जो दवाइयां हैं वो सारी रेगुलर लें. और अगर सांस की कोई तकलीफ है जो ठीक नहीं हो रही है, तो अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें. इसके अलावा कई बार स्वस्थ लोग भी हैं, उनको भी सांस की तकलीफ कई बार इस समय में सामना करना पड़ता है. कई बार अगर आपकी खांसी ऐसी है जो लंबी चल रही है, 5-10 दिन से ऊपर हो गया है, ठीक नहीं हो रही है, तो भी आपको अपने स्पेशलिस्ट की सलाह लेनी पड़ सकती है. और कई बार इस तरह की चीजों को भी हमको अस्थमा की तरह ट्रीट करना पड़ता है, इनहेलर देना पड़ता है. बाकी कई छोटे बच्चों को अस्थमा या सांस की तकलीफें भी होती हैं, तो ऐसे बच्चे जिनको अस्थमा या सांस की तकलीफ है, उनको थोड़ा ये सतर्क किया जाए माता पिता को भी, कि जो बहुत ज्यादा एक्टिविटी है बाहर जिसमें अगर उनको सांस की तकलीफ उत्पन्न हो रही है, तो उसके लिए थोड़ा सावधान रहें और अपनी दवाइयां और इनहेलर्स को रेगुलरली यूज करें.
तो अब लालिमा हम बात करते हैं छठ के महापर्व की. उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही 4 दिवसीय छठ महापर्व का आज समापन हो गया. इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी. लालिमा, पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से पर्व और त्यौहार चल रहे हैं, जीवन सभी का एक नए उमंग और उल्लास से भरा हुआ है. और मुझे लगता है कि भारतीय समाज की ये जो उत्सव धर्मिता है, यही हमें एक जीवन समाज बनाती है. त्यौहार जो रंग भरते हैं हमारे जीवन में, आमतौर पर एक रूटीन में चल रही जिंदगी में,
जिस तरह
बिल्कुल बिल्कुल और उसको
तोड़ते
जो तोड़ते हैं वो त्योहार और लोगों को एक साथ आने का मौका भी देते हैं यही त्योहार। तो चार दिन से छठ का महापर्व चल रहा था, थोड़ा सा हम श्रोताओं को बताना चाहेंगे इस पर्व के बारे में कि पहला दिन जो होता है वो नहाए खाए का होता है, इसकी शुरुआत जो होती है छठ पूजा की इसके साथ ही होती है। कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को जो व्रती होते हैं, जो व्रत रखते हैं छठ का, वो नदी में स्नान करते हैं और मिट्टी के चूल्हे पर पकाया गया भोजन ग्रहण करते हैं। दूसरे दिन खरना का होता है, तो पंचमी के दिन वो पूरे दिन निर्जला उपवास रखते हैं और शाम को पूजा करके प्रसाद के रूप में गुड़ की खीर, रोटी और फल ग्रहण करते हैं और इसे ग्रहण करने के बाद 36 घंटे का निर्जला व्रत आरंभ होता है।
माय गॉड,
इसीलिए इसको बड़ा मुश्किल भी माना जाता है जी। और तीसरा दिन जो होता है वो संध्या अर्घ क्या होता है, छठ के तीसरे दिन यानी षष्ठी के दिन जो व्रती होते हैं वो डूबते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं और ये एक बड़ी खास बात है छठ पर्व की लालिमा, क्योंकि आमतौर पर उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है, उगते हुए सूर्य की पूजा की जाती है, लेकिन छठ में डूबते हुए सूर्य को भी अर्घ दिया जाता है। और चौथा दिन जो कि आज था, तो इस अंतिम दिन सप्तमी को उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है और ये उगते हुए सूर्य को अर्घ देना जो है वो जीवन में नए सवेरे, आशा और नई ऊर्जा का प्रतीक है। इसके बाद ही व्रती अपना उपवास तोड़ते हैं और प्रसाद का वितरण करते हैं। ये जब अर्घ दिया जाता है ना लालिमा घाटों पर, तब छठ के पारंपरिक गीत गाए जाते हैं और वो उसको बड़ा एक बड़ा लाइवली और बहुत अच्छा एक पूरा माहौल वहां पर बन जाता है। ये जो गीत जो गाए जाते हैं ये केवल बिहार और भोजपुर की भोजपुरी संस्कृति की नहीं बल्कि भारत के लोक संगीत की अनमोल धरोहर हैं। और जब बात आती है छठ के गीतों की, तो एक आवाज जिसके बिना ये पर्व पूरा नहीं होता है वो है पद्मश्री और पद्मभूषण से सम्मानित मैथिली और भोजपुरी की लोक गायिका शारदा सिन्हा की,
जो अनफॉर्चुनेटली अब हमारे
जी बिल्कुल और ये बड़ा संयोग ऐसा बना है कि उसी छठ पर्व पर जब हर घर में हर चौक चौराहे पर उनके ही गीत बज रहे थे, छठ का ये स्वर अनंत में विलीन हो गया।
छठी मैया रउए असरा हमार, रउए असरा हमार, सबके पूरा मेली मनसा हमरो सुन ली पुकार, हमरो सुन ली पुकार।
और लालिमा मैथिली और भोजपुरी के संगीत प्रेमी तो उन्हें श्रद्धा से माँ या माई कहकर के भी बुलाते हैं।
यस मदिता, इट्स आयरोनिक दैट शारदा जी लेफ्ट अस ऑन अ छठ डे एंड वेरी इंटरेस्टिंग इफ यू लुक बैक ऑन आवर फेस्टिवल्स, देयर इज अ साइंटिफिक बैकग्राउंड टू ऑल आवर फेस्टिवल्स। व्हेन वी टॉक ऑफ वर्शिपिंग द सन, इट इज सेड दैट व्हाटएवर यू वर्शिप, व्हाटएवर यू रिवियर, यू विल नॉट एक्सप्लॉइट इट। सो अगर आपके साइकी में है कि आप उन्हें आप आदर करते हैं, चाहे वो सूर्य देवता हो या जल हो, तो आप फिर उनका निरादर नहीं करते, उनको एक्सप्लॉइट नहीं करते
जी।
और एंड ऑल्सो व्हेन वी टॉक अबाउट, जैसे आपने कहा निर्जला फास्ट रखते हैं, तो सुनने में तो लगता है अरे बिना पानी के कैसे फास्ट रखते हैं, बट एक्चुअली द साइंटिफिक बेसिस इज दैट दिस ऑल्सो हेल्प्स इन योर गुड हेल्थ। If you do not take water, the cells regenerate themselves and a lot of diseases get cured, especially chronic diseases. Fasting in these days, I mean, this is something which our ancient people, you know, our forefathers have taught us how to have, how to keep fast without water. And we may at some point think it's backward. The fact is they were so modern and today's modern research endorses these fasts. They say any chronic problem you want to deal with, you just go on a fasting, you fast for a few days, and especially if it's without water, so much the better. What is important is how you break the fast so that your body is not strained. But this is an amazing technique to keep your body free from diseases.
समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या है खास, और इसमें भी हम सबसे पहले चलते हैं बिहार, जहां आज लाखों श्रद्धालुओं ने विभिन्न नदियों के तटों पर सूर्यदेव और छठी मैया को अर्घ दिया। इसके अलावा लोगों ने झीलों, जलाशयों और अस्थायी रूप से छतों पर जल संग्रह कर छठ पूजा मनाई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
बिहार में लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने गंगा, गंडक, सोन, बागमती सहित विभिन्न नदियों के किनारे छठ घाटों पर उदीयमान भगवान भास्कर को अर्पित किया। इसके साथ ही चार दिनों का बिहार का सबसे पवित्र पर्व आज पारंपरिक श्रद्धा के माहौल में संपन्न हो गया। इधर लाखों की संख्या में लोगों ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में स्थित सूर्य मंदिरों के परिसर में बने तालाब या जल कुंडों में उषाकालीन अर्घ्य दिया। पटना के छठ घाटों के अलावा बक्सर जिले के राम रेखा घाट, अररिया के परमान नदी पर त्रिशूलिया घाट और अन्य स्थानों पर छठ पर्व की महिमा देखते ही बन रही थी। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना।
और अब बिहार से हम चलते हैं मध्य प्रदेश की ओर, जहां उज्जैन जिले के बड़नगर तहसील का खेड़ावदा गांव पूरे देश के लिए मिसाल बन चुका है। यहाँ की ग्राम पंचायत ने गांव को स्वच्छ और आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक अनूठी पहल शुरू की है। स्वच्छता और साफ सफाई के साथ अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं को जोड़कर खेड़ावदा को एक संपूर्ण ODF प्लस मॉडल ग्राम के रूप में विकसित किया गया है।
खेड़ावदा गांव में स्वच्छता को एक बार का काम मानने की बजाय इसे ग्रामीणों की आदत में बदलने के लिए जन अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत बच्चों की टोलियों और महिलाओं के समूहों ने गांव के घर घर जाकर कचरे को सूखे और गीले के तौर पर अलग अलग करने की प्रक्रिया को समझाया। पंचायत ने मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए स्वच्छ पेयजल का महत्व समझाते हुए RO प्लांट और पेयजल टंकी की व्यवस्था की। गाँव का कोई भी व्यक्ति मात्र 6 रूपए देकर पूरे महीने स्वच्छ पानी ले सकता है। इससे न केवल गाँव के लोगों के स्वास्थ्य में सुधार हुआ बल्कि पंचायत के प्रति उनका विश्वास भी बढ़ा। गांव के विद्यालयों में स्मार्ट क्लास के माध्यम से बच्चों को पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन और स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। शिक्षकों ने नियमित रूप से बच्चों को स्वच्छता के पाठ पढ़ाए, जिससे स्वच्छता का संदेश नई पीढ़ी में गहराई से उतरा। डिजिटल इंडिया की ओर कदम बढ़ाते हुए ग्राम पंचायत खेड़ावदा को पूर्ण रूप से वाईफाई जोन बनाकर इंटरनेट से कनेक्ट किया गया। अब सभी चौराहों व शासकीय कार्यालयों पर CCTV कैमरे के माध्यम से नजर भी रखी जाती है। ग्राम पंचायत ने बैंक से ऋण लेकर एक कचरा वाहन खरीदा और हर घर से कचरा एकत्रित करने की व्यवस्था भी की। एकत्रित कचरे को पृथक कर गीले कचरे से खाद तैयार की गई, जिसे गांव के किसान कृषि के लिए इस्तेमाल करते हैं। वहीं सूखे कचरे को कबाड़ में बेचकर सफाई कर्मियों के मानदेय की व्यवस्था की गई। गांव के हर घर में डस्टबिन रखने के लिए प्रेरित किया गया, ताकि लोग कचरे को खुले में न फेंकें। गांव में सुरक्षा के लिए सभी चौराहों और शासकीय कार्यालयों में CCTV कैमरे लगाए गए हैं। विद्यालयों में बालक और बालिकाओं के लिए अलग अलग शौचालयों का निर्माण भी किया गया है। खेड़ावदा गांव आज एक आदर्श गांव का प्रतीक है। यह एक उदाहरण है कि कैसे एक गांव अपने प्रयासों से स्वच्छ, सुजल और आत्मनिर्भर बन सकता है। परिक्रमा के लिए भोपाल से मैं संजीव शर्मा।
ऑल राइट, आफ्टर दिस स्वच्छ भारत कैंपेन इन अ विलेज, वी मूव ऑन टू कटक। द मच एंटिसिपेटेड कटक बलि यात्रा 2024 इज सेट टू बिगिन ऑन नवंबर द 15th, मार्किंग एन 8-day सेलिब्रेशन ऑफ ओडिशाज रिच मैरिटाइम हिस्ट्री अलोंग द महानदी रिवर। हियर्स अ रिपोर्ट, लेट्स लिसन इन।
बाली यात्रा ऑनर्स द एंशियंट ट्रेड वॉयजेस बाय ओडिया मैरिनर्स और साधवर्स टू साउथ ईस्ट एशिया। ऑर्गेनाइज्ड बाय द कटक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, दिस ईयर्स बाली यात्रा प्रोमिसेस टू बी बिगर देन एवर, विथ ए रेंज ऑफ अट्रैक्शन, कल्चरल इवेंट्स एंड ए फोकस ऑन सस्टेनेबिलिटी। ए की हाईलाइट फॉर बाली यात्रा इज ए न्यू टनल एक्वेरियम। एडिशनली, ए डेजलिंग लेजर शो विल रिकाउंट ओडिशास कल्चरल हेरिटेज थ्रू विजुअल डिस्प्लेस, इंक्लूडिंग हिस्टोरिक मूवमेंट्स एंड ट्रिब्यूट्स टू फिगर्स सच एज महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। द फेयर इंट्रोड्यूसेस ग्रीन इनिशिएटिव्स, ए प्लास्टिक बोटल रिटर्न प्रोग्राम ऑफर्स कैश बैक incentives to encourage recycling, while special green corridors and increased toilet facilities will enhance visitors' comfort. Beyond entertainment, Bali Yatra remains a major trade fair with over 500 Orma stalls showcasing local handicrafts, food and textiles. The Odisha government has also arranged a mobile tableau to tour nearby districts, spreading awareness of the festival and inviting wider participation.
Speaking to आकाशवाणी समाचार, डिस्ट्रिक्ट कल्चरल ऑफिसर ऑफ कटक नलिनी कांत साहू सेड,
कई सारे इनिशिएटिव हमने लिए हैं। एक हमारे जो उड़िया सिनेमा है उसका एक एग्जीबिशन म्यूजियम यहाँ सेटअप कर रहे हैं। जो हमारे जो यहाँ आएंगे वो देखेंगे उड़िया सिनेमा का हिस्ट्री, इसका इवोल्यूशन कैसे कैसे हम किस तरीके से ब्लैक एंड व्हाइट से कलर में आए, किस तरीके का सिनेमाटोग्राफी हुआ करता था, किस तरीके का चीजें यूज हुआ करता था पिछले सालों, अब क्या क्या अब यूज हो रहा है। इसके बाद हम एक साउथ ईस्ट एशियन नेशन का, एशियन कंट्रीज का एक जो हमारे उड़ीसा का जो रिलेशनशिप मैरिटाइम ट्रेड का है उसका भी एक एग्जीबिशन कर रहे हैं। हमारे जो यहाँ कई सारे एम्बेसडर्स और हाई कमिश्नर्स आ रहे हैं उनको ये एग्जीबिशन उनके लिए दिखाने के लिए है और बालियात्रा विजिट करवाने के लिए हम और कई सारे भी चीजें डेवलप किए हैं। इसके बाद ये जो स्टॉल यहाँ पड़ता है काफी लोग आते हैं, यहाँ एवरेज जो भीड़ रहता है वो 6-7 लाख एवरी डे रहता है। तो ये जो 9 दिन का फेस्टिवल होता है एवरेज फुटफॉल हो जाता है 70-80 लाख के अंदर हो जाता है। कल्चरल फेस्टिवल की बात है, इस साल हम यहाँ का लोकल स्टेट लेवल दूसरे जो नेशनल लेवल के जो आर्टिस्ट है उनको भी बुलाते हैं। इसके बाद जो एशियन कंट्रीज हैं उन देशों से में भी कई सारे फॉरेन ट्रूप्स भी यहाँ पार्टिसिपेट करने आ रहे हैं। और उसके बाद बॉलीवुड का जो म्यूजिकल नाइट है वो भी कर रहे हैं, बॉलीवुड का भी म्यूजिकल नाइट कर रहे हैं। हमारे यहाँ सोनू निगम जी आ रहे हैं, सुरेश वाडकर आ रहे हैं, हम शुरू करते हैं जो हमारे जो अनुप जलोटा जी उनको भी बुला रहे हैं इवेंट के लिए।
द फेस्टिवल विल कंक्लूड ऑन 22nd नवंबर फॉलोइंग ए सीरीज ऑफ परफॉर्मेंसेज शोकेसेस एंड ट्रेडिशंस दैट एनकैप्सुलेट द स्पिरिट ऑफ उड़ीसाज रिच कल्चरल लेगेसी। फॉर परिक्रमा दिस इज सतीश सिंह राठौर, आकाशवाणी समाचार, कटक।
राष्ट्रीय पुस्तक न्यास एनबीटी कल से 17 नवंबर तक लखनऊ के गोमती रिवर फ्रंट पार्क में गोमती बुक फेस्टिवल का आयोजन करने जा रहा है। इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। एनबीटी के निदेशक युवराज मलिक ने बताया कि इस मेले में पाठकों को नई नई पुस्तकें खरीदने का मौका मिलेगा। इसके अलावा चिल्ड्रंस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन भी किया जाएगा।
इस पुस्तक महोत्सव की जो विशेष बात यह है कि केवल ये किताबों तक ही सीमित नहीं है, किताबों के चारों ओर जुड़ी हुई गतिविधियां, चाहे बच्चों के लिए स्टोरी टेलिंग हो या क्रिएटिव वर्कशॉप्स हो या सीखने के अलग अलग बाकी दूसरे माध्यम हो, अलग अलग तरीके से बच्चों के लिए, बड़ों के लिए लेखकों के साथ रूबरू होने का मौका, नई नई किताबों का अनावरण और उन किताबों पर चर्चा आपको यहाँ देखने को मिलेगी। विशेष रूप से पहली बार लखनऊ में एक चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल भी आयोजित किया जा रहा है जिसमें आपको न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बाल जो फिल्म्स हैं वो भी वहां देखने को मिलेगी।
Alright, now we take you on a tour of India's freedom struggle and recall events that happened on this day.
November 8th, 1966 is the death anniversary of a remarkable woman and a freedom fighter, Rameshwari Nehru, popularly known as Mataji. She played a significant role in the awakening of women that left an indelible mark in the history of the women's movement in India. Rameshwari Nehru was married to Brijlal Nehru, who was the nephew of Motilal Nehru.
It was from Anand Bhavan, Prayagraj, that Rameshwari Nehru started her eventful career, which was dedicated to the cause of women and the freedom of the motherland.
Rameshwari Nehru started the first women's journal in Hindi, Stri Darpan, in 1909 from Allahabad. It was through Stri Darpan that she tirelessly espoused the cause of women's rights.
She became an active member of the Women's India Association and All India Women's Conference. She had also started a Nari Niketan to help women rescued from brothel houses.
When the British government appointed the Age of Consent Committee in 1928 to fix the consent for girls, Rameshwari was the only Indian woman member of the committee.
This committee's report formed the groundwork for the Child Marriage Restraint Act. She said,
Swaraj cannot be attained by people whose other halves are stricken by paralysis. The battle of Swaraj has to be fought and won by men and women alike.
Post-independence, she played a significant role in the rehabilitation of the people who had migrated due to the trauma of partition.
In 1955, the government of India honoured Rameshwari Nehru with Padma Bhushan for her outstanding contributions, especially in the field of rehabilitation of widows, orphans, children and old people.
She also won the Lenin Peace Prize in 1961.
Domestic benchmark equity and indices today ended with marginal losses. 30-share BSE Sensex dipped 55 points to close at 79,486. NSE Nifty 50 fell 51 points to close at 24,148.
और अब खेल के मैदान में चलते हैं.
क्रिकेट, इंडिया विल टेक ऑन साउथ अफ्रीका इन द फर्स्ट T20 इंटरनेशनल ऑफ द फोर मैच सीरीज एट किंग्स मेड इन डर्बन टुडे. द मैच विल बिगिन एट 8:30 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम.
और कोरिया बैडमिंटन मास्टर्स टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल सेमीफाइनल में भारत के किरण जॉर्ज ने अपनी जगह पक्की कर ली है. वहीं शतरंज में भारत के अर्जुन एरिगेसी ने पिदे विश्व शतरंज रैंकिंग में नंबर 2 पर पहुंचकर इतिहास रच दिया है. और श्रोताओं, अब समय है उन व्यक्तित्वों को याद करने का जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या फिर जन्मदिवस. तो सबसे पहले हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और भारत के उप प्रधानमंत्री रहे लाल कृष्ण आडवाणी की, जिनका आज जन्मदिन है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें उनके 97वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी हैं. सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत रत्न लाल कृष्ण आडवाणी देश के सबसे प्रशंसित राजनेताओं में से हैं.
We are also remembering today Dinanath Batraji. Well, he was we lost him yesterday. Unfortunately, he was the general secretary of Vidya Bharati, the school network run by the RSS. He also founded the educational activist organizations like Shiksha Bachao Andolan Samiti and Shiksha Sanskriti Uttan Nyas. Very important, he was instrumental in the NEP formulation. Sorry that we lost him yesterday.
बिल्कुल. और अब हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत की जिन्होंने अपना परिचय कुछ इस तरह से दिया है कि मैं जो हूँ जॉन एलिया हूँ जनाब, इसका बेहद लिहाज कीजिएगा. ऐसी ठसक और बेबाकी से अपना परिचय देने वाले उर्दू के अजीम शायर जॉन एलिया की आज पुण्यतिथि है. सरल जबान में निहायत गहरी बात कहने वाले जॉन शायर होने के साथ ही पत्रकार, अनुवादक, गद्यकार और विचारक भी थे. उत्तर प्रदेश के अमरोहा में जन्मे सैयद हुसैन जॉन असगर को न चाहते हुए भी 1956 में माँ बाप की मौत के बाद बड़े भाई के पास पाकिस्तान जाना पड़ा, लेकिन ताजिंदगी वो अमरोहा को और हिंदुस्तान को याद करते रहे. लालिमा देखिए, वो लिखते भी हैं कि हम आंधियों के बन में किसी कारवां के थे, जाने कहाँ से आए हैं, जाने कहाँ के थे. क्या पूछते हो नामो निशा ए मुसाफिरा, हिंदुस्तान में आए हैं, हिंदुस्तान के थे. और पाकिस्तान में पहुंचने के बाद लंबे बालों वाला ये शायर मुशायरों की कामयाबी की जमानत था. लेकिन इस पॉपुलैरिटी के बाद भी उनका जो पहला काव्य संग्रह उन्होंने प्रकाशित करवाया वो 1990 में जाकर के कराया है. शायद नाम से था वो.
Let's remember Sitara Devi. Yes, she was born as Dhan Lakshmi. She was born on this day in 1920, passed away on the 25th of November 2014. She was an Indian dancer of the classical Kathak style of dancing, a singer and an actress, and recipient of several awards and accolades, and performed at several prestigious venues like Royal Albert Hall, London, and Carnegie Hall, New York. At a young age, she met Rabindranath Tagore, who, out of affection, described her as Nritya Samragni, meaning the Empress of Dance. Some people call her the Kathak Queen as well.
जी बिल्कुल. और आपको पता है लालिमा कि 8 साल की उम्र में इनकी शादी कर दी गई थी, लेकिन स्कूल जाने की जिद करने पर इनकी वो शादी टूट गई और इन्हें स्कूल में प्रवेश दिलाया गया जहां पर डांस और मन से उनका रिश्ता शुरू हुआ. और बाद में उनका परिवार मुंबई चला आया जहां फिल्मों में कोरियोग्राफी करने के अलावा उन्होंने कुछ फिल्मों में अभिनय भी किया.
मैं जानती हूँ कि तुम मेरे शौहर हो, मेरे सरताज हो, मैं अपने फर्ज को भी खूब समझती हूँ, लेकिन दिल से मजबूर हूँ. तुमने ये भी कभी सोचा कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ? कभी भी मोहब्बत से रजिया कहकर पुकारा? हमेशा एक ही ख्याल में.
सितारा देवी वाज आल्सो अवार्डेड द पद्मश्री एंड द कालिदास सम्मान एंड संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड.
जी बिल्कुल. और अब हम बात करते हैं इंडी पॉप और जैज क्वीन उषा उत्थुप की, जिनका जन्मदिन है. चेन्नई के एक छोटे से नाइट क्लब में गाने से लेकर फिल्मों और प्राइवेट एल्बम्स में कई हिट गाने देने तक उत्थुप ने कई पीढ़ियों को मंत्रमुग्ध किया है. लालिमा, उनकी आवाज़ और बिंदास गायकी दोनों अलग करती थी, लेकिन उससे भी ज्यादा जिस बात ने लोगों का ध्यान खींचा वो था उनका पारंपरिक भारतीय पहनावा. exactly. यानी सारी, बड़ी सी बिंदी और बालों में गजरा, और इस पहनावे के साथ ये वेस्टर्न स्टाइल ऑफ सिंगिंग. और श्रोताओं अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए मुदिता और लालिमा अनेजा को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन करिए हमारी वेबसाइट www.newsonair.com पर। साथ ही आप हमारी मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी हमारे कार्यक्रम 24 घंटे सुन सकते हैं।
इसके साथ ही आज का प्रोग्राम समाप्त करते हैं। नमस्कार।